تفسیر سے پہلے ہم تھوڑا سا سبق کا خلاصہ کریں گے، اور خاص طور پہ چونکہ سورت کا آخری سبق ہے تو اس میں ہمیں کچھ باتیں مزید سمجھ آئیں گی. اس پورے سبق میں پرپس آف لائف، زندگی کا مقصد کیا ہے، بڑی معروف آیات آج کے سبق میں ہمارے سامنے آئیں گی جو ہم شروع سے کئی بار سنتے آئے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دو سوال پوچھتا ہے، کیا فحسد تم انما خلقناکم عبثا. آج کے سبق کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے کچھ دلائل ہیں، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں آتی اس کی بات کی قدر بھی نہیں آتی. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک انسان کی موت کے وقت کی بے بسی، کہ کس طرح سے جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی خواہش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا وقت بھی اگر مجھے مل جائے تو میں کچھ چھوڑے ہوئے کام کر لوں. پھر آج کے سبق میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمیں لمبی عمر مل جاتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم اچھے عمل کیوں نہیں کر پاتے. تقریباً ہم 15 مختلف قسمیں دیکھیں گے کہ اچھے عمل نہ ہونے کی وجہ کیا. اور اس کے بعد عالم برزخ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی. پھر اسی طرح سے برائی کا جواب بھلائی سے کیسے دے، یعنی جب کوئی ہمارے ساتھ برے طریقے سے پیش آئے تو ہمیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، جہنم میں جہنمیوں کی شکلیں کیسی بگڑ جائیں گی اس کا ذکر ہے، اور چند دعائیں ہیں جن کو مانگتے ہوئے ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے کہ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت وہ دن ہو جس دن ہماری جان جائے. آئیے شروع کرتے ہیں، آیتوں کے ساتھ ساتھ چلیں گے. آیت نمبر 91 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مت تخذ اللہ من ولد، اللہ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا. ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کیا گیا اس میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسب ناطے کا ذکر کیا گیا. چونکہ اس سبق میں رشتوں ناطوں کی بات آنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے آپ کو کلیئر کر دیا کہ میرا انسانوں کے ساتھ صرف ایک ہی رشتہ ہے، اور وہ خالق اور مخلوق، عابد اور معبود کا. تو لہٰذا میری رشتہ داریاں نہ گھڑو، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ وما کان معہ من الہ، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. یعنی دو باتیں کلیئر کر دیں آیت 91 کے شروع میں ہی. نمبر ایک، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی. اور اولاد نہیں ہے تو ساتھ ہی ساتھ صورت اگر اخلاص کے آیات کو لگا لیجیے تو اس کی بیوی بھی نہیں ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی بیٹی ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، تو باپ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی ذات نور ہے، اگلی ہی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ ہے کیا. لہٰذا کوئی ہم میں سے یہ کہے کہ اس مائک کا کوئی باپ ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کی بہن کون ہے، تو بیوقوفی ہے نا. یہ رشتے تو انسانوں کے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ جبرائیل کا بھائی کون ہے، جبرائیل کی ماں کون ہے، میکائیل کی بیوی کا کیا نام ہے؟ بیوقوفی کی بات ہے. ایون جنوں کے ساتھ بھی ہمارا کوئی ایسا تعلق نہیں. رشتے ناطے ہونا کرنا انسانوں کا معاملہ ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی نہیں رشتے ہوتے. آپ کہیں کہ اچھا اس بلی کا میاں یہ ہے اور اس کی بہن یہ ہے. ایون اگر ایک ساتھ ایک بلی کے 6 بچے بھی پیدا ہو جائیں، کبھی ہم نے ان کو ان کے بھائی اور بہن نہیں سمجھا. تو یہ انسانی معاملات ہیں، اللہ کے ساتھ ایسی باتیں نہیں رکھنی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں لاجیکلی بتاتے ہیں کہ بالفرض محال اس کے ساتھ ایک اور الہ بھی ہوتا. اس کو یوں سمجھیے کہ ایک حکومت ہے، ایک ملک ہے، تو وہاں دو بادشاہ ہوتے، یا ایک ملک ہے تو اس کے دو وزیر اعظم ہوتے، تو کیا نقصان ہوتا؟ اذن لذہبا، تب اذن کا اگر آپ کو لفظ آ جائیں ترجمے میں لکھنے کو تو تب، وین، دین، دین کا معنی یہ تب، یعنی اگر ایسا ہوتا تب، لذہبا، البتہ لے جاتا، کلو الہن، ہر الہ. یہ چھوٹے چھوٹے قومے لگا لیا کریں تو آپ کو ترجمہ کبھی بھی انشاءاللہ نہیں بھولے گا، مفہوم واضح ہو جائے گا کہ البتہ لے جاتا، کلو الہ، ہر الہ کس کو لے جاتا؟ بیما خلق، جو اس نے پیدا کیا. سمپل سی بات ہے، اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو کیا وہ اپنی مخلوق کو دوسرے کے ساتھ رہنے دیتا؟ وہ تو اس کو لے کر الگ ہو جاتے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ دو مختلف پارٹیاں ہوتی ہیں کسی بھی ملک میں، تو بالآخر دونوں پارٹیوں والے اپنے اپنے خم خیال لوگوں کو لے کر الگ ہو جاتے ہیں. یہ میں ہوں، میرا گروہ ہے، یہ میری پارٹی ہے، یہ میرے لوگ ہیں، ان کو الگ لے کے ہو جاتے، وہ الگ ہوتے. وہ کیسے برداشت کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے لوگ کسی دوسری پارٹی کے لیڈر کو سپانسر کریں؟ तो ये तो एक फितरी सी बात है कि हर बंदा अपनी ही चीज़ को लेके अलग हो जाता, और दूसरा काम वो क्या करता, लाला, इसको फिर हाईलाइट करवा लें कि फिर वो चढ़ाई करता। लाला का मानी लाला नहीं करेंगे आप, बल्कि चढ़ाई कर देता बाधो मलाबाद एक दूसरे के ऊपर। यानी पहले हर एक अपनी फौज को अलग करता, अपने स्पॉन्सर्स को अलग करता, लोगों को मुजाहरे करके दिखाता कि देखो हमारे साथ कितने लोग हैं, और जब काफ़ी सारे लोग उसके सामने होते तो वो सोच लेता कि मेरी ताकत ही बहुत है, और जो लोगों को ताकत समझते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, तो वो दूसरे माबूद के ऊपर हमला कर देता। दुनिया में तो ऐसे ही होता है। हालांकि सुभान अल्लाह अम्मा यसिफून, अल्लाह पाक है इससे जो ये बयान कर रहे हैं, यानी अल्लाह के बारे में ऐसी बातें करना जेब भी नहीं देता, क्योंकि आलिमुल गैबी व शहादा, वो तो गैब और शहादा को जानने वाला है। फ़तआला बहुत बुलंद है, अम्मा यशरिकून हर उस चीज़ से, अम्मा क्या है अन और माँ, हर उस चीज़ से जो यशरिकून वो शरीक कर रहे हैं। देखिए तौहीद की बेहतरीन दलाइल है, दुनिया में हर इंसान अपनी बड़ाई चाहता है, उसके अंदर गुंदी हुई है ये चीज़। बच्चा भी बड़ा बनना चाहता है, इसीलिए दूसरे बच्चों की शिकायतें लगाता है आके। लेकिन अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान अपने बड़े बनने के जज्बे को अल्लाह के बड़े होने में छुपा दे। मैं कुछ नहीं, मेरा रब बड़ा है, इसी का नाम अब्दियत है, इसी का नाम बंदगी है। कुछ भी करे इंसान चाहता है कि मेरा नाम हो। अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम एक रब के नाम अपनी कुव्वतों को लगा कर कह दो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो कुछ भी मेरे से हुआ या मैंने किया अल्लाह के सिवा और कोई नहीं था मुझे इसकी ताकत देने वाला। तो अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत की ये आदत यहाँ दलील में बनाई कि देखो अगर किसी और ने मिसाल के बादल बनाए होते अल्लाह के सिवा, तो क्या वो खामोश बैठा रहता? वो तो बादलों के नीचे भी लिख देता मेड बाय फलां इला, समंदर के कोने पे लिखा होता मेड बाय फलां, प्रोड्यूस उसने किया, क्रिएटर वो है, फलां कौन है। जब तुम्हें कायनात पर किसी जगह अल्लाह के नाम के सिवा किसी के आर्टिस्टी का कोई लेवल नहीं दिखता, तो मान जाओ कि ये सब कुछ रब ने बनाया। असल में बात वही है जो पिछले सबक के आखिर में थी, तौहीद। और आप देख रहे हैं आप तौहीद पे कितना गहरा जोर है। आज हम मुसलमानों को सिर्फ यही बात अगर समझ आ जाए, हमारी ज़िंदगियों के किबले दुरुस्त हो जाए। अगली आयतों में अब अल्लाह सुबहाना तला हमें दिखाते हैं कि जब एक इंसान के ऊपर अल्लाह की पकड़ आने के हालात बन जाए तो वो अल्लाह से क्या कहे। कुल कह दीजिए, दुआएं बहुत सारी आएंगी अब इस हिस्से के साथ हमारे पास। कुल कह दीजिए, ये भी अल्लाह की मोहब्बत है कि खुद ही सिखाता है, दुआएं मांगना भी सिखाता है। क्या कह दीजिए, रब्बी ए मेरे रब। ये जो बा के नीचे ज़ेर है ना, ये असल में छोटी या थी। छोटी या का मानी होता है मैं, मेरा, मुझे। तो अरबी में इख्तसार के लिए या की जगह सिर्फ ज़ेर कर दी जाती है। तो रब्बी ए मेरे रब, इम्मा अगर, इन और मा था असल में, ये जो शर्त होती है ना इसके अंदर दो लफ्ज़ हैं, तो मीम मीम नहीं था। अरबी का असूल क्या है कि नून और मीम जब इकट्ठा आ जाए, जैसे यहाँ हो रहा है, इन और मा था, इन मैंने अगर, माँ मैंने जो, तो नून और मीम जब इकट्ठा होता है ना तो पहला नून भी मीम बन जाता है, तो क्या बन गया, इम्मा। तो दो मीम की जगह पे शद कर दी तो इम्मा, यानी अगर तू, इफ़ यू, तुरी यन्नी, तू दिखाए मुझको। अब ये जो लफ्ज़ है ना तुरी यन्ना, तू में तू है, ता में तू है, जैसे अक्सर जो मजारे की अलामत है उसमें ता का मानी तुम होता है। आगे क्या लफ्ज़ रहेगा, इरा अतुन, रोयत से, रुया रा, दिखाना, यानी इम्मा तुरी यन्नी, अगर तू दिखाए मुझको। ये जिसमें नून है ना इसको नून सकीला कहते हैं, शिद्दत है इसके अंदर, यानी अगर तू वाकई मुझको दिखा दे। मुराद ये है कि अल्लाह जिस अजाब की धमकियां सारी ज़िंदगी इन काफरों को दी हैं, अगर तू मेरी ज़िंदगी में ये अजाब ले आया, मा युआदून, जिसकी इनको धमकी दी जाती है, यानी इन कुफार को तुझे जुटलाने की वजह से जो अजाब आना है, अगर बिलफर्ज वो मेरी ज़िंदगी में आ गया, तो रब्बी फला तजअलनी फिल कौमि ज़ालिमीन, तो परवरदिगार मुझे इन ज़ालिम लोगों में शामिल ना करना। यहाँ से आप देखिए नबी सल्लम की आजज़ी, अल्लाह ताला उनको दुआएं सिखा रहे हैं कि ए नबी आप ये दुआ मांग लीजिए कि अगर मेरी ज़िंदगी में इन जालिमों की पकड़ हो गई तो मुझे उससे बचा लेना। क्योंकि आप देखिए कि जब किसी चीज़ को आप पीसते हैं, यानी गेहूं को पीसेंगे तो घुन भी तो साथ ही पीसेगा ना। जब किसी बस्ती में अजाब आता है तो उम्मीद होती है ना कि वहाँ के मोमिनों को भी पकड़ा जाए। बिल्कुल सूरत अनफाल की आयत 25 में जैसे हमने पढ़ा था कि वत्तकु फितनतल्ला तुसीबन्नल्लज़ीन ज़लमु मिनकुम खासा, और डरो उस अजाब से कि जब वो आएगा तो तुम में से सिर्फ गुनाहगारों ही को अपनी लपेट में नहीं लेगा। वालम अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, जान लो कि अल्लाह सजा देने में बहुत सख्त है। मतलब यह है कि जलजिला जब आएगा तो ये तो नहीं है कि काफिर का घर गिर जाए और मुसलमान का घर ना गिरे, और ये बहुत सख्त बात है कि जब अल्लाह की पकड़ किसी ऐसे मुल्क पे आती है जिसको इस्लाम के नाम पर बनाया गया हो, शरीयत के तकाज़ों के लिए बनाया गया हो, लेकिन वहाँ उसका अमली नफाज ना हो, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आती है। और ऐसे कोड़े हम पे कई दफ़ा बरस चुके हैं पीछे, तो फरमाया कि ऐसे वक्त में अल्लाह ताला मुझे ना पकड़ना। अब यहाँ तो इस दुआ की बात है ना, हदीस में हमें इस किस्म की खूबसूरत दुआएँ मिलती हैं। तिर्मिज़ी की रिवायत है, सूरत स्वाद की तफसीर में आती है और मुस्नद अहमद में भी है कि अल्लाह के नबी सल्लम इस तरह से दुआ किया करते थे, व इज़ा अरदत बिकौमिन फितनतन, जब तू इरादा करे किसी कौम की पकड़ का, फतवफ़नी इलैका गैर मफ्तून, तो ए मेरे रब मुझे इससे पहले ही दुनिया से उठा ले बग़ैर आजमाए हुए। यानी ये दुआ बहुत खूबसूरत है, हम सब भी मांग सकते हैं। आप देखिए कि ख़ास तौर पे जब हम लोग नॉन मुस्लिम्स के बीच में रहते हैं जहाँ शिर्क आम है, ज़िना आम है, बदकारी आम है और जिनसी बुराइयाँ आम है, तो किसी वक्त भी अल्लाह के अज़ाब का कूड़ा बरस सकता है। तो ये दुआएं इंसान को अल्लाह की पनाह में ले लेती हैं कि अल्लाह तुम मुझे ना पकड़ना। इसी तरह एक और दुआ भी आती है, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा ला तक्तुलना बिग़ज़बिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका वाफ़ीना क़ब्ल ज़ालिका, ए अल्लाह मुझे कत्ल ना करना, अल्लाहुम्मा ला तक्तुलना बिग़ज़बिका, अपने गुस्से के साथ मुझे कत्ल ना कर देना, वला तुहलिकना बिअज़ाबिना, और ना मुझे हलाक करना अपने अजाबों के साथ, वाफ़ीना क़ब्ल ज़ालिका, अगर कभी यह अजाब आने वाला हो तो मुझे उससे पहले ही आफियत दे दे। सुबह शाम इन दुआओं का विर्द रखा करें अपने आगे। हमें नहीं पता, ख़ासतौर पर जहाज़ों में बैठ के लोगों को शराबें पीते देखकर और इसी तरह के गलत चीज़ें मंजर देखते वक्त हर वक्त ज़ुबान पे ये दुआ रहनी चाहिए। कहीं भी ज़मीन के टुकड़ों से गुजरें, किसी जगह शिरक का अड्डा हो, कहीं शैतान नाच रहे फुदक रहे, ये दुआएं पढ़ते हुए वहाँ से गुजरें, क्योंकि हमें नहीं पता कि अल्लाह को अगर गुस्सा आ गया, ज़मीन ज़रा सी हिल गई तो हम भी वहाँ चले जाएँ। और अल्लाह के नबी से पूछा गया था कि जब किसी जगह अजाब आता है तो नेक लोग भी तो मारे ही जाते हैं, उनका फिर क्या बनेगा? तो फरमाया कल क़यामत के दिन वो अपनी नियतों पर उठाए जाएंगे, यानी हलाक तो वो वहीं होंगे। अब आप इसको अपने ऊपर लीजिए, आप लोगों की खुशी के लिए किसी गुनाह की महफिल में चले गए, ये अलग बात है, आज उसको गुनाह की नहीं फन की महफिल लोग कहते हैं, और वहाँ अगर पकड़ आ गए तो फिर वहाँ बैठ के यही दुआ पढ़ते रहें, और दिल चाहे तो ऊंची पढ़ें, आपको अगली दफ़ा बुलाएंगे भी नहीं। क्या आप क्या हमारे रंग में भंग डाल रहे हैं? हम खुद सोचें, क्या कभी हमने शादियों और खुशियों के नाम पर गुनाह की महफिलें सजाते वक्त सोचा कि यहाँ अगर अजाब आ गया तो क्या बनेगा? जो तो खुश हो रहे हैं वो तो खुश हो लें, हम वहाँ किस मुश्किल में पढ़ के जाके बैठे? क्या फिर भी हमारे दिल में रहेगी मुरव्वत के अच्छा फलां की खुशी फलां की नाराज़गी? फिर वो कहेंगे आप तो बड़े हैं, आपके बगैर तो शायद बेटी रुख्सत ही नहीं हो सकती। तो भाई हमारी हया रुख्सत हो जाए, तुम्हारी बेटी रुख्सत होना हमारी बला से। और बात वह गूंगे शैतान बन के हम बैठते हैं उन जगहों पर और खुश होते हैं। और मैं देखती हूँ कि खुशियों के मौके पर लोग कहते हैं सेग्रीगेशन नहीं हो सकती, उन्हीं घरों में कोई दुख का मौत का वक्त आ जाए वहाँ बिल्कुल सेग्रीगेशन होती है। वजह क्या है कि शैतान उस वक्त हमें बड़ा बन के दिखाता है। तो ऐसे अजाबों से अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे कि जिसमें हम करते या ना करते हुए फंस जाएं। और अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, व इन्ना अला अन नुरियका मा नईदुहुम लकादिरून। नबी का सवाल क्या था कि अगर तू मुझको दिखा दे वो अजाब जिसका तूने इनसे वादा किया, तो अल्लाह ताला कहते हैं हाँ यकीनन हम इस पर कादिर हैं कि आपको दिखा दें वो अजाब जिसकी इनको धमकी दे रहे हैं। यानी इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपकी ज़िंदगी में इन पर अजाब आ जाए, मुमकिन है। यहाँ एक छोटी सी बात जहन में रखिए, सूरह तौबा में बात हुई, पिछले सबक में भी बात हुई थी कि नबी की मौजूदगी में कहीं अजाब नहीं आता, पक्की बात है। और दूसरी बात है कि नबी कभी भी अल्लाह की अजाब से नहीं मारे जाते, ना तो अजाब आता है ना नबी की पकड़ होती है, इसके बावजूद नबी डर रहा है। और नबी को दुआएं सिखाई जा रही हैं, तो मेरे और आपके पास तो कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं कि आपके ऊपर कोई अल्लाह की पकड़ नहीं आ सकती। हम दूसरों को क्या कहें, हमारे तो अपने ऊपर बहुत सारे गुनाह लागू होते हैं कि जिसकी पकड़ में हम आ सकते हैं। तो लिहाजा ऐसी तमाम चीज़ों को सामने रखते वक्त हर वक्त अल्लाह के अजाब की पकड़ का इंसान को मुंतजर रहना चाहिए, और गलत काम करते वक्त फिर वो सारा नशा हरन हो जाता है, फिर वो इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट कहाँ रहेगी जहाँ हर वक्त दिल ही हॉल रहा है कि अभी ज़मीन फटेगी और हम इसके अंदर चले जाएंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हाँ ये ला सकते हैं, आप क्या करें। अब देखिए यहाँ मक्की सूरत है ना, ये आपको शुरू में भी बता दिया था, कितने साल का अल्लाह के नबी के साथ मक्का वालों का तकलीफ दह मामला था। कौन सी तकलीफ़ उन्होंने आपको नहीं दी, कौन सा इल्ज़ाम आप पे नहीं धरा, किस तरह आपके रास्तों में रोड़े नहीं अटकाए, किस तरह आपकी तरफ आने वालों को आपसे बदगुमान नहीं किया। लेकिन अल्लाह अपने नबी को क्या सिखाता है, इदफा बिल्लती ही अहसन अहसन सैया, आप मुकाबला कीजिए बुराई का अच्छाई के साथ। ये है खूबसूरत किरदार। इनकी शरारतों के साथ खूबसूरती से दरगुजर कीजिए। इन लोगों का आपके साथ जैसा भी रवैया हो मगर आपको इसका मुकाबला नेकी और भलाई से करना है। वो आपको गालियाँ दें, आप इनको दुआएँ दें। वो आपको बुरा भला कहें, आप इनको अल्लाह की तरफ बुलाते रहें। भाई इतना सब्र कहाँ से लाएं हम, हमें तो पता है वो हमारे खिलाफ़ बातें करते हैं, हमें तो पता है वो हमसे बदगुमान है। तो कहा नहनु आलमु बिमा यसिफून, ये है सब्र दिलाने वाला नुक्ता, हम खूब जानते हैं इन लोगों को जो ये बातें बना रहे हैं। यहाँ से अब एक दाई दीन को अमली रहनुमाई मिलती है। याद रखिए जिसने भी हक बात पहुँचाई सब ने उसको अच्छा नहीं कहा, और वजह उसकी हक है। पिछले सबक की आखिरी आयत को याद कर लें कि हक आता है लोगों को गुस्सा आता है। आप लोगों की बुराइयां छुड़ाए उनको अच्छा लगेगा, आपको 100% यकीन है ना मेरी गलती है, और फिर भी अगर आपको उस्ताद खड़ा करके पूछे आपने ये क्यों किया तो आपको पसंद नहीं आएगा। आप कहेंगे मुझसे पूछे ना, हाँ जी मुझे पता मैंने ये गलत काम किया। ऐसे ही है ना, हमें बुरा लगता है कि जब कोई हमारी गलती को पॉइंट आउट करता है, तो दाई दीन का तो काम ही पॉइंट आउट करना होता है क्योंकि किताब जो है वो कुछ और कहती है। अब ऐसे वक्त में जब लोग आपकी बात के वजह से आपसे दुश्मनी पे आ जाएं, तो आप क्या करें, इत्फा बिल्लती ही अहसन, इनके मुंह ना लगें, आप इनके बारे में एक भी नेगेटिव जुमला ना बोलें। किल विद काइंडनेस, इसलिए कि बुराई कभी बुराई से नहीं मिटती। आपके टेबल पे दाग लगा हुआ है और उससे भी ज़्यादा गंदे कपड़े से ला के उस टेबल को साफ़ करेंगे ना, वो दाग तो हो सकता है उतर जाए, लेकिन उससे ज़्यादा कपड़े पे लगी हुई इंक हो सकता है कि लग जाए। हमेशा साफ़ कपड़े से गंदी सतह जो होती है ना साफ़ होती है। इसके लिए सब्र चाहिए, और सब्र का बात है जब नहनु आलमु बिमा यसिफून, मेरे रब तुझे तो पता है ना कि ये मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं हूँ ऐसी नहीं, ऐसी तो नहीं हूँ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह तू जान ये जाने। अब इंसान कर ले ऐसा, लेकिन वो एक दुश्मन बैठा हुआ है ना अंदर नफ्स के तौर पर और इबलीस के तौर पे, वो फिर आके जो अंदर से उश्किलें देता है, और वो जो आके अंदर वो चिलबली करता है और जलती पे तीर लगाता है, उसका जिक्र अब अगली आयतों में, कि अगर तुझे सब्र करना मुश्किल लगे, शैतान तेरे अंदर कोई ऐसे ख्यालात पैदा कर दे, तो वक़ुर रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन, और कहिए कि मेरे रब मैं तो तेरी पनाह में आता हूँ इस बात से के शयातीन के वसवसे मेरे पास आए। यहाँ लफ्ज़ देखिए हमजात, हमजतुन की जमा, और हमज कहते हैं हरकत को, हिलाना। आप आराम से बैठे थे सब्र करके, एकदम शैतान ने पीछे से आके वसवसा डाला, तो अंदर क्या होगी, वाइब्रेशन। ये जो वाइब्रेशन है ना, ये हमज है। कभी आप अकेले कमरे में बैठे हो ना, तो एकदम कमरे का पर्दा जो ना हिले, तो आपको शैतान कहेगा पर्दे के पीछे कोई है। अच्छा लगता है बिल्ली, अच्छा चूहा है, अच्छा चोर है, अच्छा सांप है, बस वो ख्याल आने की देर है, आपका चैन रुखसत हो जाता है। इसी तरह हम नहीं चाहते कि लोगों के बारे में गलत सोचें, लोग हमारे बारे में गलत जुमले बोल भी दें हम नहीं चाहते बोलें। सुकून क्वाइट कीप काम बैठे हुए, एकदम शैतान आके अंदर जाके टक करके देखता है, देखो तुम्हारे बारे में आज उसने ये सोचा, ये कहा, वो तुम्हें पता है उसने ये कहा, उसने ये कहा। बस उसी के साथ वो अंदर एक वाइब्रेशन मैसेजिंग टिक 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 दिमाग से ब्रेन और इधर से उधर, उधर से इधर की बातें जाती हैं, और जब ये जाएं तो अल्लाह कहते हैं फ़ौरन पढ़ लो कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान का तो काम ही यह है कि वो लोगों की ज़िंदगी का सुख चैन बर्बाद करें। ये बात मैंने की तो मेरे ज़हन में एक मिसाल आ गई। आप देखिए कि जैसे ये मेरी उंगलियां हैं ना, आपकी भी हैं, ये मैं हिला रही हूँ तो हिल रही है ना, ये हिल रही है, इसको मोड़ रही हूँ मुड़ रहा है। आपको पता है कि ये उंगलियों का मुड़ना कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? ये ब्रेन से। ब्रेन से मेरी इस उंगली के बीच में नर्व्स हैं, जिसको नर्वस सिस्टम हम कहते हैं। नर्व्स, न्यूरोलॉजी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। अगर खुदा न खास्ता ये जो नर्व्स हैं मेरी, जो ब्रेन से जुड़ी हुई हैं, अगर इसको बीच में कहीं से काट दें, तो अब मैं उंगली हिलाना चाहूँगी, हिलेगी नहीं, कुछ नहीं होगा। जो फालच होता है, जिसको कोमा कहते हैं, उसमें सिर्फ यही होता है कि आपकी जो नर्व्स हैं ना, वो काम करना छोड़ती है। ब्रेन से मैसेजिंग नहीं होती। अब आप सोचिए, हमारे और अल्लाह के बीच में जो ताल्लुक है ना, उसके अंदर बीच में जो नर्व्स है ना, ये रसूल और रसूलों की दावत है, किताब है आज के दौर में। अगर ये ताल्लुक कायम रहता है ना, तो हमारा रिस्पॉन्ड करना बहुत ईजी होता है, अच्छी बात पे भी, बुरी पे भी। डायरेक्ट ब्रेन, और ब्रेन इस वक्त आप सोच लें, जैसे अल्लाह का हुक्म, कुरान, तालीमात, बिल्कुल हम सही रिएक्ट करते हैं लोगों से भी और अल्लाह से भी, जब हमारा ताल्लुक रसूलों के ज़रिए इस किताब से जुड़ा होता है। जब ये ताल्लुक कटता है, और कोई आपको ज़रा जुमला तो बता दे, तुम्हें पता रात को वहाँ शादी में लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे थे, बस सर से पाँव तक पहले तो आग लगती है, नतने फूलते हैं, फट 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 यूं देखने लगते हैं, और फिर जो रोते, मुंह से जाग निकलते, जज्बाती होके, फिर जो हम उसके कसीदे खोलते हैं आपके सामने, वो तो कोई बात ही नहीं है। इसका इलाज बताया गया, रिलैक्स, नहनु अलमु बिमा यसिफून, कह लो जो कहते हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और यहाँ ना चाहते हुए भी अबू हुरैरा याद ही आ रहे हैं, कि जब किसी ने उनसे कहा कि अबू हुरैरा फलां शख्स आपकी बुराई कर रहा था, तो कहते हैं भाई बैठो मेरी बात सुनो, नहनु अलमु बिमा यसिफून, कह लो जो कहते हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तो हर वक्त तीन बातों का गम सता रहा है, कि जब नामे अमाल बटेंगे तो दाएं हाथ में बटेंगे कि बाएं में, और जब अमल तुलेंगे तो मेरा पलड़ा भारी होगा नेकियों के गुनाहों का, और जब बुलसरात से गुजरूंगा तो उस वक़्त मैं बच के गुजर जाऊंगा या कट के आग में गिरूंगा, और अगर इन तीन मुकामात से मैं आसन दर्जे पे गुजर गया तो मुझे कोई परवाह नहीं कि कोई मुझे अच्छा कह के बुरा करे। ये है नाहन आलम बीमा सिपन। और अगर मैं इनमें तीन में से किसी एक मुकाम पर रोक लिया गया, तो दुनिया के हर फर्द को हक पहुंचता है कि वो मुझ अबू हुरैरा की बुराई करे, कि कितना बुरा था देखो जो पुलसरात से नहीं गुजर सका। क्या मेरे अंदर इतना सब्र है? अपने आप से पूछिए, 18वां पारा अपने सब के करीब है, क्या मैं अपनी ज़ात के खौल से निकली हूँ, टूटी हूँ कि नहीं टूटी? अच्छा, मैंने फील किया कि जब कुरान शुरू में होता है ना, तो हमें बुराइयाँ अपनी दिखती हैं, पता भी चलता है, साफ पता चलता है, लेकिन वो एक ईगो होती है, मुँह पर नहीं लाते। 15-20 पारों के करीब पहुंच के फिर ज़ुबान से इंसान इजहार करता है कि कल तक मैं ऐसी थी, अब मैं ऐसी हो गई हूँ, और ये जुरत बड़ी खूबसूरत होती है। जब हम अपने अंदर ये चीज़ें रखते हैं ना, तो बाद दफ़ा फिर दोबारा वैसे ही हो जाते हैं। ऐसी कोई तब्दीली अगर आपको अपने अंदर दिखे ना, उसका फ़ौरन इजहार करें, शोहर के सामने, बच्चों के सामने, दोस्तों के सामने, साथियों के सामने, कि इस किताब ने तो मुझे तोड़ के रख दिया। अगर मैं पहले वाली ही होती तो मैं कितनी बुरी थी, मैं कैसी करीख थी, किस तरह से मैं ये सोचती थी। और इसी को करेक्टर बिल्डिंग कहते हैं। इस तरह से कुरान हमें तोड़ता है कि लोगों से बेनियाज होकर, सिर्फ और सिर्फ रब के नियाजमंद होकर, शैतान से पनाह मांग के, वाऊज़ बिका रब्बी यहदुरून, और अल्लाह मैं तो इससे भी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे कभी सामने भी आए। कौन? यहाँ तो शैतान है ना, आप और मैं जो बात कर रहे हैं उसमें समझ लें, कि अल्लाह जो मेरी बुराई करता है, मेरा कभी उससे सामना ही ना करा कि उसको मैं देखूं तो मेरे दिल में वो बातें आ जाएं। यानी इतना ज़्यादा इग्नोर करने वाला और ख़ूबसूरत तरीके से बेनियाज रहने वाला अंदाज़ अल्लाह अपने नबी को सिखा रहे हैं कि आपने क्या करना है अबू जहल की गंदी बातें सुन के। अच्छा, बाज़ दफ़ा होता पता क्या, कोई बुरी बात कह ही देता है, उसके दिल में हसद है या बुग़्ज़ है, दुश्मनी है, वो और बात है, आपको तो पता ही नहीं चलनी थी, वो आपका प्यारा वहाँ से सुन के आके आपके दिल पर चोट डालता है। उससे ज़्यादा बुरा काम आपके दोस्त ने किया। कभी किसी की कोई बुरी बात सुने, वहीं फाड़ के फेंका, पहले चेक करें ये बात ठीक है नहीं, उसको जवाब दे दें, जिसकी बात है उसको कभी ना बताएं। फिर बाद में कहते हैं चले अब दिल पे ना लीजिएगा, वैसे दिल पे कैसे ना लें, आपने लेके दे दी, हमेशा याद रखें, इस छोटे से टुकड़े को वहाँ बोलें, वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ इसकी ज़रूरत है, पहले तोलें फिर बोलें। आप देखें अगर ये आदत एक हमारे अंदर आ जाए, हमारे शायद 40-50% गम ही दूर हो जाए। उसने ये कहा, उसने ये बोला, उसने ये कहा, मैं सच्ची थी, मैं झूठी थी, मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, तुम्हें दूसरे सुनाएंगे, तो वो सारी ज़िंदगी जिहाद करते गुजरता है अपनी ज़ात के दिफा में। अल्लाह कहता है छोड़ो, जाने दो तुम्हारी बला से, और ताइये दीन के लिए शैतान के फितनों से बचने का इससे खूबसूरत तरीका नहीं। अच्छा, यहाँ आप दोस्तों की बात छोड़ें, बाज़ दफ़ा दूसरे लोग, यानी सेम, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, वो कहते हैं ना कि हम पेशा दुश्मन हमेशा, बाज़ दफ़ा दूसरे दीनदार किसी दीनदार के ख़िलाफ़ बात कर देते हैं। मिसाल है कि जैसे फ़ी ज़माना अगर कोई काम कर रहे हैं आज दुनिया में, कई लोग दीन के नाम पे हैं, कोई उर्दू स्पीकिंग है, कोई इंग्लिश है, वट एवर, अब एक उर्दू स्पीकिंग शख्स के ख़िलाफ़ किसी दूसरे स्पीकर ने कोई जाके तकरीर की, या कोई उसके ख़िलाफ़ बात कर दी, उसके इदारे के ख़िलाफ़ कोई आर्टिकल छाप दिया, वहीं फाड़ दें। बाज़ लोग फिर उसको काट कूट के ला के कहते हैं देखें ये लोग कह रहे हैं आपके ख़िलाफ़, और वो फिर एक बंदा और जलेगा तो कुड़ेगा ना, अखबारों में नशर करना, उसको वहीं फाड़ दें, किसी को कानों कान खबर ही नहीं होगी। और याद रखिए कि सच को आँच नहीं है। जितना अल्लाह के नबी को लोगों ने बुरा कहने की कोशिश की, दुनिया में किसी को नहीं कहा, तो क्या अल्लाह के नबी बुरे बने? नहीं। इन्ना कला खुलूक नजीम व रफ़ान अल्लाह का ज़िक्र। आप अगर सच्ची हैं तो आप मुतमईन हो के घर के कमरे में बैठ के अपना काम करें। फुर्सत ही नहीं होती एक सच्चे बंदे के पास इन कामों को लाने का। और आप देखेंगे जब ऐसे लोग जो आपके ख़िलाफ़ बात करें कभी आपके सामने आए, तो दूसरों को तो अगर आप ऐसे मिलते हैं ना, तो उसको आप यूँ मिलें, हाथ खोल के मिलें। जब तक दूसरे दीनदारों के लिए आपके दिल नहीं खुलते, बदगुमानियों को फाड़ दें, वो आपके ख़िलाफ़ हैं, उनको बुरा लगेगा, वो माइंड करेंगे, उनको अच्छा नहीं लगता, उन बेचारों को कुछ नहीं लगता, ये शैतान है जो यहदुरून की सूरत में आपके दिल में बदगुमानियाँ डाल रहा है। ऐसी बातों से दीन की रूह ख़त्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात देखिए, अगर ज़िंदगी भर ये सब कुछ हम ना भी कर पाएँ, एक दिन हमारी ज़िंदगी में ऐसा आएगा जिस दिन हम लोगों की बातों, उनकी तनकीद, उनकी तारीफ़ से बेनियाज़ हो जाएंगे, और वो मौत है